جس میں ہم یہاں اس سال پوری کوشش کریں گے. میں اللہ سے دعا ہی کر سکتی ہوں کہ ہمارے وقت میں اتنی برکت ہو کہ ہم پورا پارا یہاں تلاوت سے بھی سنیں گے. سننا چاہتے ہیں اچھی سی آواز میں تلاوت؟ ایک رب کو کریں گے, پھر اس کی تلاوت سنیں گے, پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. اور جو قرآن کا حصہ آپ نے پڑھا ہوگا, پھر اس کی جب تلاوت سنیں گے تو آپ اس کو فیل کر کے دیکھیے گا کہ جس کو نہیں سنا ہوا سمجھا ہوا اس سے بہت فرق ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کے لیے اور بھی بہت کچھ ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے دورے قرآن کا ایک بہت بنیادی حصہ ہوگا کھلو وشربو, کھاؤ اور پیو. آپ کہیں گے روزے کی حالت میں آپ کھانے پینے کی باتیں ہم سے لیں گے اور ہمیں کھانا پینے کا کہیں گے, تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں کھانے پینے کا حکم دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ ہمارے دین میں یہ چیز نہیں ہے کہ جی آپ اگر کھاتے پیتے ہیں تو آپ گناہگار ہو جائیں گے. تو ہم نے اپنی سسٹرز کی سہولت کے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کہ صحت مند کھانا کھاؤ, ہیلدی کھاؤ, تو اس سال ایک سلسلہ رکھا ہے. آپ کو یہاں ڈیلی ہم ایک ریسیپی شیئر کریں گے اور بعد میں آپ لوگ جو رجسٹرڈ ہیں ان کی لسٹوں کو بھیجیں گے بھی, جس حد تک بھی ممکن ہوگا ہم اس کو دیں گے. تو آج اسی سلسلے کا انٹرو ہے, کل سے پہلی ریسیپی شروع ہوگی. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے کہ یہ جو اس وقت ہمارا پریزنٹیشن ہے ہیلدی کوکنگ کا, یہ کیوں ہے؟ ہم اس کو ہیلدی کوکنگ کس بیس پہ کہیں گے؟ کیونکہ یہ سنہ کے مطابق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمپلیٹ رول ماڈل تھے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک تمہارے لیے رسول کی صورت میں بہترین اسوہ حسن ہے. تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتے ہوئے کھائیں گے پئیں گے تو صحت مند ہوں گے. یا مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا سیرت کا کہ مدینہ شہر میں کوئی بھی حکیم نہیں تھا, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں دیر واز نو ڈاکٹر ان مدینہ. تو دور سے کسی اور شہر سے ایک شخص آیا جو حکیم تھے, اس دور کی طب جانتے تھے. انہوں نے سوچا کہ یہاں تو میرا کام بہت چلے گا تو میں یہاں بیٹھ کے دکان کھولتا ہوں. جب انہوں نے مدینہ میں دکان کھولی, ایک دن گزرا, دو دن, کئی دن گزر گئے, ان کے پاس کوئی بیمار ہی نہیں آیا. تو ایک دن انہوں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو بیمار کوئی نہیں ہوتے. کہا کیوں؟ کہنے لگے پہلی بات یہ کہ ہم صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں جس میں پروٹیکشن ہے, دوسری بات یہ کہ ہم پیٹ تھوڑا خالی رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں, یعنی کھانا کھاتے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ نہیں اپنا بھرتے, اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرتے ہیں. تو اس شخص نے کیا کیا ہوگا, آپ میں سے کوئی گیس کرے؟ دکان لپیٹی, کہنے لگا تمہیں میری ضرورت نہیں ہے, اور وہ وہاں سے چلا گیا. اس کے برعکس آج دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی بیماریوں کی باتیں آتی ہیں اور اس طرح کی بیماریاں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت میں رکھے, بالکل بھی پتہ نہیں چلتا. تو آج ہمارا جو فوڈ پروسیس ہے, جو کھانا کھانے کے طریقے ہیں, اس میں بہت خرابیاں ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری گائیڈ ہے یہ ہیلدی ایٹنگ کے بارے میں. ہم رمضان کے مہینے کو بہترین طریقے سے لے کے چلیں گے, کچھ ریسیپیز ہوں گی. آج کے اس پریزنٹیشن میں ہمارے پاس کچھ ہیلتھ ٹپس ہیں, اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ دیکھیے کہ فرسٹ تھنگ اس میں کہہ کہ ایٹ ہیلدی, ہیلدی چیز کھائیں. ہم بعض دفعہ رمضان کے مہینے کو بہت زیادہ کھانا کھانے کا مہینہ بنا لیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے کہ بہت زیادہ کھانے کی بجائے کوالٹی کا فوڈ کھانا ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ جب ہم افطار کے وقت بہت لمبے آورز کے بعد کھاتے ہیں اور بہت زیادہ ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں کہ جو ہمارے اسٹمک پہ بوجھ ڈالتی ہیں, ہمیں اس سے پیاس لگتی ہے, تو اس سے نقصان ہوتا ہے. آپ کے سامنے دو لسٹیں دی جا رہی ہیں اور آپ لوگ بے فکر ہو جائیں, آپ سب کی ای میل میں یہ پریزنٹیشن ہم بھیجیں گے, لیکن اس کو گو تھرو کر لیتے ہیں. بیسٹ چوائسیز فار سحور اور ورسٹ چوائسیز فار سحور, اور یہ ہم سب کے لیے ایک چیک لسٹ بھی ہے کہ ہم سحری میں جو کھاتے ہیں ہماری کون سی لسٹ میں آتا ہے, بیسٹ میں آتا ہے یا ورسٹ میں آتا ہے. بیسٹ چوائس میں سب سے پہلے کیا ہے, ڈیٹس, کھجور کھائیں. کھجور کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا کچھ رکھا ہے, بیسٹ سورس آف آئرن بھی ہے اور فل انرجی دیتی ہے انسان کو, ہوتی میٹھی ہے لیکن اس میں اتنی شوگر نہیں ہے کہ جو دوسری آرٹیفیشل چیزوں سے انسان کو ملتی ہے. پھر اسی طرح ہول گرین بریڈ یا اوٹ میل ہے. ایک اوٹ میل کا کھانا تو میں نے بھی آپ کو سکھانا ہے, मैं सोच रही थी कि अपनी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। इतना हेल्दी वो खाना है कि रियली कि मैंने अरब मुल्कों में लोगों को देखा है कि वो इफ्तारी के वक्त पे वो खा रहे होते हैं। इंशाल्लाह आपको इन्हीं दिनों में एक दिन देंगे, लेकिन कोशिश करके होल ग्रेन खाएं। नबी सल्लम ने कभी मैदे की रोटी नहीं खाई थी। एक तो हम इसको ऐसे सोच लेते हैं ना कि हाय गुर्बत थी, क्योंकि हदीस में जब हम पढ़ते हैं कि लोगों तुम्हारे नबी ने कभी पूरी जिंदगी में सफेद मैदे की रोटी नहीं खाई, तो हमारा दिल बुझता है। हमें तो वो अपनी मज़े मज़े की ब्रेड्स याद आती हैं जो हम नाश्तों में खाते हैं, लेकिन जब आप उसके बारे में तिब्बे नबी में पढ़ते हैं, अभी रिसेंटली मैंने उसके बारे में एक हदीस सुनी कि मैदा जो है वो स्टमक के लिए एक किस्म का जहर है। आप इसको यूँ सोचें कि जब कभी हमने निहारी में उसको गाढ़ा करने के लिए कुछ डालना होता है तो मैदा डालते हैं ना, तो वो बर्तन में भी चिपक जाता है, तो मैदे की दीवारों में जाके उसका क्या होगा। तो होल ग्रेन आटा जो ये इंशाल्लाह हमें फायदा देगा। फिर एक और उन लोगों के लिए जिनको सहरी पकानी बड़ी मुश्किल लगती है, उनके लिए एक बेस्ट चॉइस है सहरी की, और वो क्या है, बनाना। मैं इसको बनाने को कहती हूँ बनाना, जिसको बनाना नहीं पड़ता। मुझे एक सिस्टर की बात याद आ गई, वो कहती हैं कि लोग तो रोजा उस वक्त काउंट करते हैं ना जब इफ्तारी में रोजा खोलते हैं, एक हो गया, दो हो गया, कुछ लोग ऐसे गिनेंगे ना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे गिनते हैं एक हो गया, फिर कहते हैं दो हो गया, तो कुछ लोग पता क्या कहते हैं, 29 रह गए, 28 रह गए। जिनको मुश्किल लगता है वो बैकवर्डली गिनते हैं, और जो सीधे होते हैं वो इधर से गिनते हैं। तो हमारी एक सिस्टर थी ना, तो वो कहती थी कि मैं तो सहरी पका के जब फारिग होती हूँ ना, मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र एक हो गया। उनको सहरी पकानी मुश्किल लगती है, तो जिनको सहरी में पकाना मुश्किल लगे, और मेरा जो जाती ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि सहरी पकानी इतनी मुश्किल नहीं है जितना घर वालों को उठा के खिलाना मुश्किल। तो उसका बेस्ट हल बनाना है। आप दो दो बनाना सुन के तकिए के पास रखें, आंखें बंद भी होंगी तो बनाना खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन वाकई बहुत हेल्दी है। इसके ऊपर और भी बहुत सारे प्रेजेंटेशन है, मुझे खुद भी बहुत पसंद है बनाना। तो वो मैंने जब पढ़ा तो किसी को पता था मुझे पसंद, उन्होंने मुझे ईमेल में भेजा, तो मुझे खुशी हुई कि मुझे ऐसी चीज पसंद है जिसमें इतना कुछ है, कि पोटेशियम भी और इंसान के स्टमक को बहुत अच्छा रखती है। फिर इसमें आप देखेंगे कि आप बनाना इट्स अ गुड टाइम कंट्रोल आवर थॉट, प्यास नहीं लगती अगर आप बनाना खाते हैं, और इसी तरह से जो जिस्म की पूरी पोटेशियम की वैल्यू होती है वो पूरी हो जाती है। फिर इसी तरह पोटैटोस, बेस्ट चॉइस फॉर पोटैटोस। अब आपके बच्चे सहरी में उठते नहीं, आप उन्हें कह जरा आए फ्रेंच फ्राइज बना रही हो, फिर देखें उछलते हुए आएंगे ना। जो जो चीजें उनकी पसंद की है वो आप सहरी में रखें और उनको खिलाएं। फिर इस तरह मिल्क, सुनना भी है पोटेशियम का सोर्स भी है और पीना भी आसान है, और बच्चा 2 साल तक दूध पे गुजारा कर लेता है। इसी तरह अपनी जिंदगी के जो आखिरी दिन होते हैं बुढ़ापे के, उसमें भी अक्सर बूढ़े लोग सिर्फ दूध पे ही आ जाते हैं ना, तो दूध एक कंप्लीट मजा है। फिर इसी तरह आप देखिए एवोकाडोस, ये हमारे कल्चर में इतने फेवरेट नहीं है, लेकिन आप मैंने देखा है लोग सैलड्स में इसको काट के खाते हैं, इसको स्मूदी में डाल सकते हैं, तो ये बहुत ही एक हेल्दी चीज है। फिर इसी तरह ड्राइड पीचीज, ड्राई फ्रूट वैसे ही अच्छा लगता है, और वो चीज़ सहरी में खानी चाहिए। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम बहुत ज्यादा खाने को एनर्जी समझते हैं, तो पराठा भूरा भर के जब दही के साथ और ऑमलेट के साथ खा लेते हैं तो सुबह उठते हैं तो सीना जल रहा होता है, फिर कहते हैं मैंने कल रोजा नहीं रखना, मेरी आज तबीयत खराब है। तो ये दुरुस्त सोच नहीं है। सहरी का एक थीम रखें, थोड़ा खाकर ज्यादा एनर्जी मिले। थोड़ा खाया होगा ना, तो इसका एक और फायदा क्या होता है कि जब आप बीच में अगर सनराइज के बाद थोड़ी देर सो जाते हैं ना, तो वो आपके सोने में ही हजम हो जाएगा, और आप सुबह उठेंगे तो आपको वो लेवल आपका चल चुका होगा कि आप भूख वो नहीं लगेगी। वरना आप देखें कि आप पराठा खा के सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो वो अपने सर्कल के मुताबिक दोबारा आपके भूख लगने का वक्त होता है। तो अक्सर मैं लोगों से सुना कि सहरी खा के रोजा रखें तो ज्यादा भूख लगती है, ना खाएं तो नहीं लगती। तो बहरहाल इन सब चीजों का इलाज ये है कि कम खाएं लेकिन क्वालिटी का खाएं। फिर सिर्फ पिस्तैशियोस, हमारा ख्याल है कि ड्राई फ्रूट से गला खुश्क होता है, हालांकि ये नेचुरल सोर्स ऑफ ऑयल भी होते हैं। फिर सिर्फ पम्पकिंस, खाते हैं आप में से कोई? हमारे कल्चर में कम लोग खाते हैं, लेकिन आपने देखा है अमेरिका में लोग खाते हैं। फिर इसी तरह से पीस, मटर है, कोई भी फली है वो खा सकते हैं। डार्क चॉकलेट खा लें, चले आपके बच्चों का फेवरेट नाश्ता तैयार है। हैश ब्राउन्स बना दें, अगर पोटैटो की कोई चीज बनाए साथ उनको डार्क चॉकलेट्स दे दें, उनको और क्या चाहिए, और साथ कोक का ग्लास तो खुद ही ले लेंगे, कितनी अच्छी सहरी हो गई। फिर फिर इसी तरह राइस भी एक अच्छी चॉइस है, योगर्ट भी है। वर्स्ट चॉइसेस क्या है? पाकिस्तानी कल्चर से माजरत के साथ, इंडियन बहनों से माफी के साथ, बिरयानी। आप में से कितने लोग हैं जो सहरी में भी बिरयानी खाते हैं? हम कहते रात की बची हुई यही खा लो, प्यास लगेगी इससे आपको। फिर इसी तरह से कबाब, पिज्जा, फास्ट फूड, फिर चीज, फिर हलीम, फिर आफ्टर लेफ्ट ओवर्स फ्राइड फूड, जो हमारे रात के पकौड़े समोसे बचे होते हैं, हम खवातीन कहती हैं कि फिर इसी को खा लेते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कैफीन वाली चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, स्पाइसी फूड, फैटी फूड, ये सब चीज़ें नुकसान देती हैं। ये तो नाम से ही लग रही हैं, तो इसे अवॉइड करें। जब रात को खा लिए एक दफ़ा तो काफ़ी है। फिर इसी तरह से कुछ सूप्स हैं, इसमें तो नहीं है लेकिन हम इंशाल्लाह उसको बाद में शेयर करेंगे, कि कुछ इस तरह के सूप्स होते हैं कि जो फुली बंदे को सेचुरेट भी कर देते हैं। और एक उसमें जो चीज़, आपने नाम सुना होगा कभी तलबीना का, सुना है कभी नाम तलबीना? कितने लोग जानते हैं तलबीना क्या होता है? जानती नहीं है आप, उसकी रेसिपी आपको मेरे हले काली दे देते हैं अगर मुमकिन हुआ। इतनी बेहतरीन चीज़ है नाश्ते में कि, और इतना बनाना भी आसान है, बल्कि इवन अगर आप ठंडा खाना चाहें तो आप रात को भी बना सकते हैं। तो वो भी नाश्ते के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, जिसमें बेसिकली बारले सीड्स होते हैं और उसके साथ दूध में नट्स कुछ डालकर और चीनी या शहद के साथ आप उसको लेते हैं, तो वो बहुत मज़े का एक डिज़र्ट भी बन जाता है और आपको एनर्जी भी देता है। फिर इसके बाद कुछ मिस्टेक्स देख लेते हैं कि रमज़ान के नाते से जो अमूमन हम लोग कर देते हैं, कल्चरली हम सभी कर लेते हैं, लेकिन इसको फिर माजरत के साथ लूंगी। पहली चीज इसमें क्या है? रूह अफ़ज़ा, हर रोज पीना। आप में से कोई उनका रिश्तेदार तो नहीं है? देखिए हमें पता है वो बड़ा मजे का मशरूब है और उस मशरूब से फायदा उठाते हैं, और ये तो एक किस्म का हमारा कल्चर ही बन चुका है कि रूह अफ़ज़ा के बगैर रोजा नहीं खुलता। लेकिन आप रोज ना पिए, वजह क्या है? आप देख रहे हैं कि नंबर एक ये कि उसमें चीनी बहुत है, और बहुत ज़्यादा चीनी जो होती है ना, ये इंसान को ड्राउजी भी करती है और भूख ख़त्म कर देती है। फिर दूसरी चीज़ आप देखिए कि उसकी आदत हो जाती है, उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो जिस्म को ठंडा करने के लिए आर्टिफिशियली डाली जाती हैं, इसका नुकसान है। करें क्या? मैक्सिमम 2 दफ़ा हफ्ते में पी लें, ठीक है? फिर इसके बाद दूसरी हमारी एक मिस्टेक है कि बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं हम सहरी के वक्त पे, ये भी दुरुस्ती का कारण नहीं है। जब खाली पेट पानी से भर जाएगा ना, तो नुकसान क्या होगा? भूख नहीं लगेगी, और फिर जब पानी बहुत पिया होगा तो फिर नमाज कैसे पढ़ेंगे? बाद लोग सिर्फ इसलिए तरावी नहीं पढ़ पाते कि वो झुकते हैं तो पेट का पानी हिलता है। कम पानी पिए, हाँ थोड़ा सा पी लें, फिर उसके बाद सोने से पहले जितना मर्जी पी लें, बल्कि अच्छा होगा, पहला खाना आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज करना फौरन इफ्तार के बाद, जो डॉक्टर्स हैं वो आपको बताते हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो सारे जिस्म की एनर्जी स्टमक में चाहिए होती है उस फूड को प्रोसेस करने और डाइजेस्ट करने के लिए। एक्सरसाइज करने जाएंगे तो नुकसान क्या होगा? वो सारे जिस्म में जाके ब्लड फैलेगा, तो खाना हजम नहीं होगा। फौरन ना करें, बल्कि इसका भी बेस्ट थिंग ये है कि 2 घंटे के बाद करें, सोने से पहले कर लें, ताकि सहरी के लिए आप रेडी हो सकें। फिर हैविंग डिजर्ट्स डायरेक्टली आफ्टर इफ्तार, यानी मीठी चीज़ बिल्कुल इफ्तारी के वक्त लेनी डिजर्ट की सूरत में, ये आपको ड्राउजी भी करती है और स्लीपी करेगी, तो फिर तरावी पूरी करनी मुश्किल हो जाएगी। कुछ कैप रखिए, और डिजर्ट खाना है तो ये तरावी के बाद खा लें, और उसके बाद आप देखें आपको बड़ी मीठी नींद आएगी, मीठे के बाद मीठी नींद आती है। फिर इसी तरह एक और भी गलती है हमारे कल्चर में, वो क्या है कि हम सोडियम वाली चीज़ें बहुत खाते हैं, सॉल्टिश चीज़ें आप कह लें, नमक, पकौड़े, समोसे, रोल। वैसे मैं आपसे बाय द वे पूछूं कि आप ये तैयारी कर चुके हैं? पता चले कल आप में कोई आया ही नहीं, वो कहते नहीं 2-3 दिन रह गए, वो पकौड़े बनाने थे, बेसन लाना है और रोल भरने, कबाब बनाने, ऐसा है तो हम यहाँ मिलके सब एक दिन बना के सबको दे देते हैं। है कभी भी किसी से अपने ध्यान आप पूछे ना, अच्छे से आपने रमजान की तैयारी कर ली है, तो वो कहती है बस जो रोल है ना वो भरने वाले रह गए, वो समोसों की पट्टियां बना ली हैं, अब उसके अंदर आलू भरने हैं। तो याद रखिए कि रमजान जो है वो खाने पीने का महीना नहीं है, बल्कि वो उस खाने को मेंटेन करने का महीना है। तो बहरहाल कभी कभी थोड़ा थोड़ा अच्छा होता है। सोडियम का असर क्या है कि ये प्यास लगाता है, और बहुत लंबे या घंटों के बाद जब हम ये ऊपर से खा लेते हैं तो और प्यास लगती है। करें क्या? बहुत इस तरह से खाने की बजाय आप कम लें, एक ले लें। अच्छा चलिए, पकोड़े भी कोई बुरी बात नहीं है अगर वो पकोड़ा होता, समोसे भी कोई बुरी चीज नहीं अगर वो एक समोसा होता। आप गिन के घर के जितने लोग हैं उनके लिए एक समोसा बना लें, कोई बात नहीं। कोई क्या आपको कहेगा, कंजूस कहेगा, स्ट्रेंजी के बस ठीक है। एक पकोड़ा बना ले, घर में 6 लोग हैं तो 7 पकोड़े बना ले। लेकिन वो जो हम पकोड़ों से प्लेट भर लेते हैं ना, वो दुरुस्त तरीका नहीं है। फिर इसके बाद आप देखिए कि नबी सल्लम ने कुछ चीज़ें हमें जो बताई, अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। मतलब नबी सल्लम ने जो हमें न्यूट्रिश थिंग्स बताई हैं उसको अगर हम सामने देखें तो हमें बहुत ही खूबसूरत गाइडलाइन मिलती है। वैसे तो सच्ची बात है कि उनके पास इतने खाने होते भी तो शायद वो ना खाते, क्योंकि उनको ये पता था कि जब हम जिस्म के बहुत सारे तकाजे पूरे करते हैं ना तो रूह पीछे चली जाती है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि खाने को चबाते नहीं है, बस निगलते हैं, ये भी स्टमक को अपसेट करने का जरिया बनता है, वेट गेन होता है। जो खाना आप च्यू करते हैं ना तो उसमें बॉडी के सब लिक्विड सॉल्यूशन उसमें एडअप हो जाते हैं, तो वो खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा इंशाल्लाह ताला। फिर इसके बाद आप देखिए कि कुछ चीज़ें जो बहुत ही अच्छी हैं और साइड इफेक्ट्स भी कम है, जिसमें सबसे पहली चीज़ मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा लजीज और टेस्टी फल वाटरमेलन। कोई है ऐसा जिसको नहीं पसंद? वाटरमेलन को देखकर जितना अल्लाह याद आता है। अच्छा एक तो उसका टेस्ट, उसका कलर है ना, मैं तो उसको देखती रह जाती हूँ। कभी मुझे कोई काटने को कह तो दे, फिर देखें क्या होगा। मैं अक्सर सोचती हूँ अगर किसी ने कभी वाटरमेलन खाया ना हो, देखा ना हो, और वो गोल ढोल का ढोल उसके सामने रखा जाए और उसे पूछे बताओ ये क्या है, कोई मानेगा? और सुबहान अल्लाह, इतना सुर्ख रंग और इतना जूस और अंदर काले काले बीज, और जो बीज होते हैं उसकी भी कितनी प्यारी कितारे होती हैं। ये अल्लाह से आपको करीब करेगा। आपने एक काम और भी करना है, इस दफा खाते हुए गौर व फिक्र बहुत करना है, तदब्बुर करना है। ए वाटरमेलन तुझे किसने बनाया? और आप देखिए कि वो कहाँ बना, बेलों पे लगाया। एक वाक्य कहीं पढ़ा था, दिलचस्प है तो सुना देती हूँ। एक शख्स था तो वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, तो जिसपे छोटे छोटे बेर लगे हुए थे ना, पत्ते भी थे बेर भी थे। तो सामने से दूर देखा तो एक बेलों पे बड़े बड़े तरबूज और इस तरह की भारी चीजें भी लगी हुई थी। उसने सोचा कि अल्लाह ये तूने क्या किया, इतने छोटे छोटे बेर हैं उसको तूने इतने बड़े दरख्त पे लगा दिया, और इतने बड़े बड़े तरबूज हैं उन बेचारों को तूने जमीन पे बिछा दिया। अभी वो सोच ही रहा था तो ऊपर से एक बेर टूटा और उसके सर पे गिरा। कहेगा अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे समझ आ गया तूने तरबूज क्यों दरख्तों पे नहीं लगाया। तो अल्लाह के हर काम में हिकमत है। तो तरबूज खाएंगे तो साथ आपने ये बातें भी याद करनी है। फिर आप देखिए अजवा डेट्स, खजूरें, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फल है, जन्नत का फल है। और मैंने अभी इसी ट्रिप में किसी घर हम थे तो हमको अर्ली मॉर्निंग लीव करना था, तो उन्होंने हमें स्मूदी पिलाई और मैं हैरान रह गई कि उन्होंने बताया कि उस स्मूदी में उन्होंने अजवा खजूरें भी डाली हैं और वाटरमेलन, अजवा खजूर और कुछ इस तरह की चीज़ें, और वाकई बहुत डिलीशियस भी थी। और सोच के खुशी बहुत हो रही थी कि इसी बहाने हमारे अंदर नेचुरल चीज़ें जा रही हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि रुतब डेट्स, गीली खजूरें जो हम सॉफ्ट सी खाते हैं ना, मदीना से आती हैं अक्सर, बहुत ही टेस्टी होती हैं। फिर इसी तरह पानी, आम तौर पे पानी पीजिए लेकिन खाली पेट बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, जिसका ऊपर जिक्र हुआ। फिर क्यूकम्बर, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ हाइड्रेशन, प्यास नहीं लगती खीरा खाने के बाद। फिर इसी तरह बीट, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, चुकंदर है। इन सबको मिलाएंगे तो स्मूदी भी बन जाएगी इंशाल्लाह, उसको हम बाद में बताएंगे। इस तरह कलेजी, लेवर, ये भी आप सैरी में खा सकते हैं, इससे भी प्यास नहीं लगती। फिर इसी तरह नबीज, ड्रिंक एग, ये भी बनाने का तरीका हमने अभी थोड़े दिन पहले ही सीखा है। खजूरों को भिगो देते हैं, ये देखिए खजूरें या अंगूर हैं, इनको डिप कर देते हैं, एक किस्म का आप कह लेंगे फ्रेश ग्रेप जूस होता है जिसके अंदर आप पानी डाल देते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से आप देखिए स्क्वाश, स्क्वाश बहुत किस्म की होती है, मुझे समझ ही नहीं आता ये वो एक स्क्वाश लोग खेलते भी हैं, एक स्क्वाश आप बचपन से पीते भी थे। फिर इसके बाद आते हैं कि एग्स, एग भी अच्छा सोर्स है, अगर आप एग बॉइल्ड फॉर्म में खा लेते हैं तो इससे फायदा होगा। और इसी तरह से कॉ, शीप और गोट मिल्क, यानी दूध तो बाहर अलग अपनी जगह अच्छा है। तो ये सिर्फ आपको एक छोटा सा इंट्रो देना था, जो मुझे पता है कि इस سے بہت زیادہ چیزیں آپ لوگوں کے پاس میرے سے بھی زیادہ موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اس رمضان میں بہترین طریقے سے ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے, اور ہم اس کو لے کر اس طرح آگے بڑھیں کہ خیر کا معاملہ کر سکیں.